कि अपने से जो बड़े हैं उनके चरणों में रोज नमस्कार करना चाहिए। माता पिता आचार्य और जो जाति में बड़े हो, आश्रम में बड़े हो, वर्ण में बड़े हो, अवस्था में बड़े हो, गुण में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, पद में बड़े हो, किसी भी प्रकार से जो बड़े हुए उनको नमस्कार करना। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जुन ब्रह्मचर्य हिंसा तो सारी रंग तक उच्चते। ये शरीर संबंधी तप सुख है। देवता और ब्राह्मण गुरु माने किसी भी प्रकार से अपने से बड़े हो, और प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन, पूजन का मतलब एक सत्कार करना, नमस्कार करना, आदर करना, ये पूजन के अंतर्गत है सब। और शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, तो यहां बाहर की पवित्रता से संबंध है, क्यों शारीरिक तप है। शौचाचार से सदाचार से जल मृतिका से शरीर की और पवित्र भोजन से आहार की और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके व्यवहार की, ये बाहर की पवित्रता है। और विनय बहुत ही कोमल भाव और अहिंसा, किसी की आत्मा को किंचित मात्र कभी कष्ट नहीं देना, और ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से किस्म जो मैथुन का त्याग। पुरुषों को उचित है कि जैसे स्त्री है तो न उसका दर्शन करना, न स्पर्श करना, न वार्तालाप करना, न चिंतन करना, न एकांत बात करना, न उनको याद करना, न हंसी मजाक करना, न सहवास करना, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता हो जाए तो अपने समझो कि माता बहन के समान समझ कर करके, और जो अध्यात्म विषय की, भगवत विषय की वो जरूरी बात कर सकते हैं, इसके लिए छूट है। तो ये पांच जो बात बतलाई, बड़ों का पूजन करना और बाहर की पवित्रता, शुद्धाचार, सदाचार और सरलता, जैसा मित्र का भाव वैसा ही बाहर का भाव, और हिंसा धर्म का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन, ये पांच शरीर संबंधी तप है। उनके मां पहली बात यह है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता जो है, ब्राह्मण जो है, माता पिता आर्य है, और जो गुरुजन है और महात्मा पुरुष है, इन्हें का उनको नमस्कार करना, सत्कार करना, सेवा करना, ये पूजन के ही अंतर्गत है। तो पहली बात मैंने यह बतलाई कि अपने घर में जो बड़े हैं उनके चरणों के मां रोज नमस्कार करना। अपने घर के मां इसी प्रकार जो पुरुष बड़े हैं उनको तो दूर से नमस्कार करना, और घर के बीच के मां जो स्त्रियां बड़ी है उनको, स्त्रियां अस्थि को छूकर नमस्कार कर सके, और स्त्रियां पुरुषों को दूर से नमस्कार कर सके। और पुरुष जो है सो स्त्रियों को दूर से नमस्कार कर ले, और पुरुषों को पुरुष छू करके नमस्कार कर ले। यदि गुरु पत्नी भी है और अपने से अवस्था छूटी है, वो माता के तुल्य है, किंतु चरण छू कर नमस्कार नहीं करना, दूर से नमस्कार करना, ये शास्त्र की मर्यादा है, मनुष्य का वचन है। तो आप ध्यान दीजिए कि नमस्कार करने में कितना समय लगता है, कि एक मिनट में घर में यदि 20 आदमी हो गए तो 20 को नमस्कार किया जा सके, कोई समय अधिक नहीं लगा आपका, और परिश्रम भी कोई अधिक नहीं।
और न उसमें पैसे भी खर्च होते हैं और लाभ बहुत भारी होता है। यदि चैतन्य
महाशक्ति ऐसा किया जाए तो आयु बढ़ती है, उनके आशीर्वाद से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, संसार के मां यश बढ़ता है। और नहीं भी हम इच्छा करें तो संसार के बीच के मां यश तो बढ़ता ही है, धर्म का पालन होता ही है।
और निष्काम भाव का यह प्रभाव है
कि अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नमस्कार करने से विनय भाव आता है, अहंकार का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। तो अहंकार का नाश होना, अभिमान का नाश होना, असली चीज तो यही है। तो इसलिए इसमें समय तो बहुत कम लगता है, एक मिनट दो मिनट में काम हो जाता है और लाभ का कोई ठिकाना नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तक लाभ हो सकता है। ख्याल करके देखो, महाभारत के युद्ध आरंभ होने के पहले महाराज युधिष्ठिर सब हथियारों को छोड़ करके पराजय पा शत्रुओं की सेना के बीच के वहां जा रहे हैं। ये देखकर के उनके भाई लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और भगवान कृष्ण जी भी जा रहे हैं, कोई समझा नहीं कि क्यों जा रहे। तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि महाराज जिस शत्रुओं की सेना में और पराजय पाव जा रहे हैं, इसका कोई हैस आप जानते हो तो बतलाइए। तो कृष्ण जी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष है, बड़ों की आज्ञा लेकर के युद्ध करेंगे, इस वास्ते उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए जा रहे। अब सेना में प्रवेश करने लगे तो उस समय के बीच के वहां इतनी मर्यादा थी कि कोई आपने कुछ कह नहीं सकते। तो सेना सैनिकों ने सब जगह दे दी, किंतु सैनिक लोग राजा युधिष्ठिर की कई निंदा भी करने लगे कि ये दुर्योधन की शरण जा रहा है। कहने लगे कि तुम्हारे पुरुष को धिक्कार है, किंतु महाराज युधिष्ठिर से चुपचाप भीष्म के पास गए और जाकर के शरणों में गिर गए कि महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं। भीष्म ने कहा युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हो। तो बोलो महाराज आप हमारे शत्रु की पक्ष में खड़े हैं तो हमारी विजय कैसे होगी, और जब तक आप जीते हैं तो आपकी तो समझो कि हार हो ही नहीं सकती, किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको कोई हरा सके। तो आपके जीते हुए और हमारी विजय संभव नहीं है। बोले युधिष्ठिर ये पुरुष जो है तो अर्थ का दास है और अर्थ किसी का दास नहीं। हे महाराज युधिष्ठिर मैं आपके प्रति सत्य वचन कहता हूं कि मैं कौरवों के वेतन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इनके शामिल होकर के तुम लोगों से युद्ध करता हूं। तो महाराज युद्ध करते हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो तो हमारी विजय कैसे होगी इनके शामिल युद्ध करने से। तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो ये बतलाइए, तो वैसा ही हम लोग इंतजाम करें। बोले युधिष्ठिर उस समय आएगा मैं बतलाऊंगा, अभी मेरी मृत्यु के दिन दूर है, मैं खुद बतला दूंगा तुम्हारे को समय आने पर। ठीक है, उसके बाद के बीच के वहां जो है सो द्रोणाचार्य जी के पास में गई। द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो कहा कि महाराज आप इनकी पक्ष में है तो हमारी विजय कैसे होगी, یہ شلوک کہا انہوں نے. پرشست سے ارتھ اداس ہے, ارتھ سے پرش اداس ہے, ارتھ کا داس یہ پرش ہے اور ارتھ کسی کا داس نہیں ہے, اور میں کوروں کے بیتن گڑھ کے بندھا ہوا ہوں, اس لیے ایک پرکار سے تھی یہ ہے مہاراج جی سے میں آپ کے پرتی ست وچن کہتا. تو بولے ٹھیک ہے مہاراج, بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری وجہ کیسے ہوگی کہ میرے کو کوئی اپری وچن آ کر سڑا دے گا تو میں ہتھیاروں کو چھوڑ دوں, تو تمہاری وجہ ہو جائے. اسی پرکار سے تھی کرن, اسی پرکار سے تھی اور کرپاچار جی کے پاس لگے. کرپاچار جی نے آشیرواد دیا کہ تمہاری وجہ ہو. اسی پرکار سل کے پاس لگے, سل نے بھی کہا کہ تمہاری وجہ ہو. تو سب کا آشیرواد لے کر کے اور راجا یدھیشٹھر کے لوٹ کر آ گیا. دریودھن نے سارا سونی کٹھی کر کے جو پریشرم کیا, ایک تو وہ پریشرم, ایک مہاراج یدھیشٹھر جا کر ان کو نمسکار ماتر کیا, وہ پریشرم, وہ نمسکار کا جو پریشرم ہے وہ اتنا بلوان ہو گیا کہ ان کی طرف رہتے ہوئے انہوں نے اپنے پراڑوں کا تیاگ کر دیا. راجا یدھیشٹھر کی جے کا آشیرواد دے دیا, اس کو ست کر کے گیس ہو جاؤ. یہ تو میں نے آپ کو مہیما بتلائی سہکام نمسکار کی. سہکام بھاؤ سے منش نمسکار کرے تو سنسارک لابھ اس کو ہوتا ہے. آپ سنسار کے بیچ کے ماں مہاراج یدھیشٹھر جو ہے دھرماتما مانے جاتے ہیں, اور کتنے اس کوٹی کے دھرماتما ہیں. مہاراج یدھیشٹھر کا پراتہ کال اٹھ کر کے کوئی نام سمرن کرے تو وہ دھرماتما ہو جاتا ہے, اس پرکار سے شاستر کہتے ہیں. تو بولتے ہم نام تو یدھیشٹھر کا اچارن کر سکتے ہیں, نام اچارن کرنے سے یدھیشٹھر یاد آتے ہیں نا, اور یاد آنے سے یدھیشٹھر کے بھاو ان کے ماں پرویش کرتے ہیں. جو منش کسی کو یاد کرتا ہے ان کے گن اور آچرنوں کی سمرتی ہوتی ہے. اس پرکار سے بار بار سمرتی ہونے سے اس کے ہردے میں وہ گھر کر لے. یہ جو کثرت کرتے ہیں یہ مہاویر نام رتیا کاڑا کا بہت سے آدمی, کیونکہ مہاویر ہنومان جی کا نام ہے. ہنومان جی بڑے بلوان تھے, اتنے بھاری بلوان تھے کہ ان کو کوئی پراجیہ کرنا سہل کی بات نہیں تھی, اتنے بھاری بلوان تھے. رام اور راون کے جد کے ماں لنکا کانڈ میں لکھا ہے, والمیکی رامائن میں, تلسی کرت میں نہیں, والمیکی رامائن میں لکھا ہے کہ جس سمے کے بیچ میں راون نے موہناست چلایا تھا, سب مورچھت ہو کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے, رام لکشمن بھی, تو اس سمے میں پہلے مورچھا جو ہے بھوکشن کی اور جاموونت کی جگ, تو جاموونت نے ساودھان ہوتے ہی بھوکشن سے پوچھا کہ بھوکشن ہنومان جیوت ہے نا, تو بھوکشن نے پوچھا جاموونت سے کہ مہاراج شری رام چندر جی کا لکشمن جی کا نام آپ نے نہیں لیا اور ہنومان کا نام لیا, یہ کیا بات ہے؟ تو جاموونت کہتے ہیں کہ بھوکشن جب یہ ہنومان جیتے ہیں تو ہم سب جیتے ہیں, اور ہنومان مر گیا تو ہم سب مر گئے. ایک سمے کے بیچ کے ماں آپ نے پدم پران میں لکھا ہے कि जिस समय के बीच के माँ श्री रामचंद्र जी ने असल में यज्ञ आरंभ किया था, तो उस घोड़े की रक्षा के वास्ते पुष्कल और समझो कि आपने शत्रुघ्न जो थे खास करके, और ये भी साथ के माँ थे हनुमान अंगद आदि जामंत आदि ये भी थे। तो एक दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ एक राजा के साथ में, उस राजा का नाम मुझको ख्याल नहीं रहा, वो शिव का भक्त था, तो उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के बीच के मैं समझो कि शिवजी महाराज अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के वास्ते आए थे उसकी पक्ष के बीच के मां, और समझो कि शत्रुघ्न को पुष्कर को मूर्छित कर दिया था उन्होंने। उस समय के बीच के मां हनुमान ने सबके दांत खट्टे कर दिए। उस समय के बीच के मां जो पूछा जो है या नंदीश्वर जो है भैरव जो है इन सबको एकदम समझो कि हरा दिया। तब शिव जो तो खुद सूर लेकर के हुआ, और शिव ने सूर चलाई हनुमान के ऊपर, तो एक प्रकार से सूर को पकड़ करके और दांतों से तोड़ के टूक टूक कर दिया शिव की त्रिशूल। फिर समझो शिव जी को अपने पूछ में लपेट करके की और जमीन के देखे के मारे था। तो शिव जी तो एक प्रकार से बोले ना जब खुश हो गए कि भाई तुम्हारी विजय हुई तुम हम खुश हो गए। तुम बोल मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं। तो हनुमान ने कहा हम और कुछ सहकार से नहीं चाहते, इतनी सहायता चाहते हैं कि मैं द्रोण पर्व के ऊपर जाकर के सर्जीनी मूर्ति ले आऊं और शत्रुघ्न को पुष्कर को जो बेहोशी हो गई है उसको मैं जीवित कर लूंगा और अपने आप सबको जीवित कर लूंगा जितने मूर्छित हुए हैं, किंतु आप इनकी लाश की इच्छा चौकसी करो कि जिसमें इनकी लाश जो है तो कायम बनी रहे जितनी बार में लौट कर वापस आओ। तो ऐसे हनुमान जी तो आज अखाड़े का नाम महावीर अखाड़ा, सुग्रीव थे उसके राजा थे, सारी दुनिया में फिर लो सुग्रीव के नाम से कहीं आपको अखाड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था। तो हनुमान का नाम लेने से थी शरीर में बल है तो आ जाता है, क्योंकि वे बड़े बलवान थे। इसी प्रकार से राजा युधिष्ठ का नाम लेने से थी धार्मिक भावों की जागृति हो जाती। आहा कि राजा कैसे युधिष्ठ धर्मात्मा थे, उनकी धार्मिक कथा यदि सुनाई जावे तो थोड़ा भी जिसका हृदय कोमल हो तो उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इतने समझो कि आपने प्रभावशाली और बड़े धर्मात्मा पुरुष थे महाराज युधिष्ठिर, आपको ख्याल रहे कि 12 वर्ष तक तो ये वन में रहे और एक वर्ष के लिए अज्ञातवास का जो नियम था उसका पालन कर रहे थे, विराट नगर के मां रह करके, और पांचों भाई वहां नौकरी करते थे और द्रौपदी भी ऐसा दासी होकर के रहती थी। इतने बड़े राजा किंतु आपत्ति काल के कारण से थी और विखे के कारण से थी राजा विराट के यहां अपने नामों को बदल कर करके और नौकरी करने लगे। भीमसेन तो रसोई का काम करते थे, रसोई की जगह सबको भोजन कराते और खाते, और द्रौपदी जो है समझो कि राजा विराट की जो रानी उसकी दासी होकर के दासी का काम किया करती थी, और राजा युधिष्ठिर जो है मंत्री का काम करते थे, और नकुल जो है नकुल एक प्रकार से थी घोड़ों के ऊपर अफसर था, घोड़ों के सरदारों के ऊपर, और सहदेव ग्वालियों के ऊपर अफसर था, और समझो अर्जुन जो है वो नाच करके वहां लड़कियों को पढ़ाया करते थे और उसका नपुंसक स्वरूप था, नपुंसक बनकर के और एक लड़कियों को पढ़ाया करते थे। दुर्योधन की सभा के वहां ये चर्चा हुई कि पांडव कहां है, तो चारों तरफ दूत भेजे गए, जैसे सीता की खोज के लिए और सुग्रीव ने बंदरों को सारी पृथ्वी के ऊपर भेजा था, उसी प्रकार सारी पृथ्वी के ऊपर दूत भेजे गए और दुर्योधन के दूत जाकर के सब पृथ्वी को खोज डाली और आकर कह दिया कि पांडवों का पता नहीं लगा कि पांडव कहां है। तो भीष्म जी हंसे, बोले पांडव कहां है इसका मुझको पता है। तो आप बताइए कि पांडव जो है राजा युधिष्ठिर वहां है, तो युधिष्ठिर कहां है, युधिष्ठिर कहां है, कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश के बीच के मां अकाल नहीं पड़ेगा, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे वहां महामारी नहीं आ सकेगी, पर एक हिजाय ताजी की बीमारियां तो नहीं आ सकेगी, और जहां राजा युधिष्ठिर बात करेंगे उस देश के मां धन और गौओं की वृद्धि होगी, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहां धर्म की वृद्धि होगी, प्रजा धर्मात्मा होगी और सत्यवादी होगी, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश में सब प्रकार का सुख है सुख होगा। ये सुनकर के दूतों ने कहा इस समय के बीच के मां विराट नगर के मां ये सारी बातें हैं, वहां गौ की भी वृद्धि बहुत हो गई और बड़ा धर्म का पालन होता है, एक पापी दानव जो कीचक था वो भी मारा गया और उसको उसमें दशक धार हाथियों का बल था, बिना भीम के उसको कौन मार सकता है, तो संभव है कि पांडव हो तो वहां, तो ये मंत्रणा हो कि पांडव यदि वहां हो गए तो वे अधर्म नहीं देख सकेंगे। तो राजा विराट के करीब 100,000 गवां है, तो दो तरफ है गवां, एक तरफ की गवां एक पार्टी दूसरी तरफ की दूसरी पार्टी वहां से ले आवे, यदि वहां होंगे तो हम लोगों को कभी गवां नहीं लाने देंगे, पांडव वहां होंगे, और यदि नहीं होंगे तो हमारे गोधन से हजम हो जाए, गोधन हमको मिल जाएगा, तो ये निश्चय कर लिया। तो सुश्रमा ने कहा कि एक तरफ तो मैं जाऊंगा और एक तरफ कौरवों ने अपनी सारी सेना को लेकर चढ़ाई कर दी। तो सुश्रमा एक दिन पहले पहुंचा तो वहां से खबर आई, सहदेव वहां का मालिक था गांव के ऊपर, कि महाराज सुश्रमा गांव को ले जा रहा है, गांव को एक छीन करके ले जा रहा है, हरण करके को छीन करके को, तो उसी वक्त चढ़ाई कर। राजा विराट अपने सारे दल बल से चढ़ाई कर दी। युधिष्ठिर ने कहा कि आपका जो रसोई बनाता है ना उसका नाम जो बल्लभ है उसको भी साथ में ले लो, वो युद्ध के मां निपुण है उसको मैं जानता हूं। तो इस प्रकार से सबको ले गए अर्जुन को छोड़कर, और वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुश्रमा बड़ा बलवान था, तो एक प्रकार से राजा विराट को बांध करके ले गया, उनकी सेना को विध्वंस कर दिया, और कितनी सेना भाग गई कितनी मर गई, और वो प्रकार से थी विजय पा करके के गांवों को छेद करके और समझो की हरण करके के ले गया। उसके बाद के बीच के मां महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन अरे हम लोगों के जीते हुए और हमारा मालिक समझो की जा रहा है पकड़ के ले जा रहे हैं शत्रु, हमारा धर्म कहां रहा, तो अपना एक प्रकार से बल दिखला। भीमसेन ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अपने बल को प्रकट करूंगा तो ये बात विख्यात हो जाएगी कि ये भीमसेन है, और ये विख्यात होने से फिर 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ये आप सोच रहे हो। बोलो भीमसेन कोई चिंता की बात नहीं, हम फिर 12 वर्ष के लिए वनवास में चले जाएंगे, किंतु हम जीते हुए धर्म की हानि नहीं देखे, तुम जाओ और एक अपना पूरा बल प्रकट कर करके और अपने मालिक को छुटाओ और गवां को छुटाओ। जब हमारे जीते हुए गवां जो है और मालिक है ان کو لوگ لے جائے ہیں پکڑ کر کے, تو یہ ہمارے سمجھو کہ جنم کے کلنک لگتا ہے. ہم جیتے ہوئے ایسا نہیں دیکھ سکتے, ہم مر جائیں گے تو چاہے صحیح ہو, ہم جیتے ہوئے اس پرکار سے کیسے دیکھ سکے. تو بھیمسین من کے وہاں سمجھو کہ کروڑ کر کر کے دیکھے, اور ایک وہاں کوئی تال کا وش تھا اس کو اکھاڑا, اور اکھاڑ کر کے سمجھو کہ سب کو مارنا شروع کیا, کہ جیسے مرج پاس جی کے حکم سے تھی منتر لوگ کتوں کو مارتے, برادر برادر مارنا شروع کر دیا. اور دیکھا رہے یہ کون آ گیا, کیا بات ہے, سمجھو کہ سینا کو ایک دم تھوڑے کار کے ماسٹر سینا ان کا جنس کر دیا, اور بٹی سینا کچھ بھاگ گئی, اور راجا اپنے سسرما کو جا کر کے پکڑا, اور پکڑ کر کے باندھ کر کے لے آئے, اور اپنے مالک کو چھڑا دیا, اور گاؤں کو بولے واپس لے کر گھیر کر کے شہر کی طرف, اور پوچھا کہ بولو کیا حکم دیتے ہو, اس راجا کو جان سے مار ڈالوں یا چھوڑ دوں. تو وراٹ نے کہا کہ ہمارے راجنیتی میں یہی دھرم ہے کہ راجا کا اپمان کر کے چھوڑ دینا چاہیے, جان سے نہیں مارنا. تو اس کا اپمان کر کے اس کو چھوڑا کہ دیکھو خبردار, ایسا ساتھ پر کبھی نہیں کر, تمہارا پران میں نے تمہارے کو پران دان دیا جاتا ہے, تمہارے پرانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس طرح سے اس کا اپمان کر کے کہ اور اس کا تسکار کر کے اس سے نکال دیا, اور اپنے سب گاؤں کو لے کر کے چلے آئے. دوسرے دن دوسری طرف سمجھو کہ اپنے دریودھن اور جو ہے کہروں کی سینا کو ساتھ میں لے کر کے دریودھن ٹوٹ پڑا, گاؤں کو ہرن کر کے دریودھن لے جا رہا ہے. آ کر کے خبر دی گوالیہ نے کہ کہرو لوگ جو ہے اپنے دوسری طرف کی گواں کو ہرن کر کے لے جا رہے. تو بولے کیا اپائے کیا جا, ساری سینا جو ہے وہ تو سسرما کے ساتھ کے وہاں جد کرنے چلی گئی, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اتر کمار وہاں تھا وراٹ کا پتر, اس نے کہا کہ میں ہوں نا, ایک پرکار سے میرے کوئی ساتھی ہوئے تو میں سب کہروں کو اکیلا ہرا سکتا ہوں اور اس گواں کو چھٹا سکتا ہوں. تو دروپدی کا نام سریندری تھا, سریندری نے کہا کہ یہ برندا جو ہے یہ شاستی کا کام بہت اچھا جانتا ہے, میں جانتی اس کو. تو برندا کو بلایا, برندا نام ارجن کا, کہ برندے کیا تم نے شاستی کا کام کیا ہے, تم گھوڑا آنا جانتے ہو؟ بولے جانتا ہوں. کس کے گھوڑے آ کے تم نے؟ بولے ارجن کے گھوڑے آ کے. اب ارجن ہے تو بولے چلو وہاں شیخی مار کر کے آیا کہ میں اکیلا ہی سب کرموں کو ہرا دوں گا. تو آنے کے سمے اس کی اترا کمار کی بہن کا نام بھی اترا کر اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جو جاتے ہو سو ٹھیک ہے, کنتو راجا لوگوں کی جو پگڑی ہے, پگڑی کے میں جو جری کے چلے ہوتے ہیں نا وہ تم لے آنا. تو اسی سے میں اپنے جو بڈی ہے اس کا اوڑھنا گھاگرا بناؤں گی. بولے بہت ٹھیک, چلے آئے. اب سینا کے نزدیک آئے تو ساگر کے سمان سینا پڑی ایسا دکھا, ارے باپ رے باپ, یہ کنارا تو دکھتا ہے اور وہ کنارا نہیں دکھتا. جیسے سمندر کے چار کناروں میں ایک ہی کنارا دکھتا ہے, سمندر کے تٹ پر جا کر دیکھ لو ایک ہی کنارا دکھتا ہے, اسی پرکار سے اس سینا کا کیول ایک ہی کنارا دکھتا ہے اور ادھر کا کنارا ہی نہیں دکھتا. تو اس کی اپما بھی ہے وہاں کہ ساگر کے ماپک سینا پڑی تھی کروں. اس کو دیکھ کر کے اتر کمار گھبرا گیا, بولے بھر لے اپنے رتھ کو واپس دے. بولے کیوں؟ کہ میری سامت نہیں ہے کہ اتنی بڑی سینا کے ساتھ میں اکیلا میں گھر سکوں. تو تم رنواس میں کہتا تھا, بولے استریوں کے سنمکھ سبھی آپ کی بڑائی کرتے ہیں, میں نے بھی اپنی بڑائی کر لی. ارے کھتری ہو کر کیا پیٹ دکھا کر کے جاؤ گے؟ بولے میری سامرتھ نہیں ہے کہ میں ایک لڑ سکوں. ارجن نے کہا کہ ہم تو رتھ کو واپس نہیں لے جائیں گے. تب اس نے دیکھا کہ یہ تو جا کر کے کال کے منہ میں جھونک دے گا, اور وہ تو ساکشات کہا ہے. تو اتر کمار جو ہے سو رتھ سے کود پڑا, رتھ واپس نہیں لوٹایا تو رتھ سے کود پڑا, کود کر کے شہر کی طرف جانے لگا. دھمک ہوا تو ارجن نے دیکھا
तो पीछे से देखा तो कृतवार तो वापिस भाग रहा घर की तरफ। अर्जुन भी इस अर्जुन भी वहां उसी वक्त कूदा और कूदकर उसका पीछा किया और जाकर उसकी चोटी पकड़ी। बोला कि तुम वापिस क्यों जाते हो? बोले मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम मुझको प्राणों का दान दो, मारना है तो तुम मार गए। अरे कह रहा हूं कि हाथ ले जाकर मुझको क्यों मरवा दो? भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उनका मैं मुकाबला कर सकूं। अर्जुन ने देखा कि भाई अब इससे कुछ होना नहीं, जब ये ध्यान ना करता तो क्या करेगा? तो बोले अच्छा तू मुझको जानता कि नहीं, मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता। तो तने कभी अर्जुन का नाम सुना था? हाँ, पांडव पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनका नाम मैं जानता हूं। बोले वो अर्जुन मैं कैसे विश्वास करूं कि आप अर्जुन हो? अर्जुन के दस नाम से वे आप बतलाइए, उनका हेतु बतलाइए। जैसे फाल्गुन नाम क्यों हुआ, धनंजय नाम क्यों हुआ, ये सब तो अर्जुन ने प्रत्येक नाम अपना बतलाया, उनका हेतु बतलाया कि अर्जुन के जितने नाम थे, पास है, किरीटी है, धनंजय है, सब नाम बतलाए। तो उसको विश्वास हुआ कि अर्जुन है। तो आप लोगों की अक्सर शस्त्र बोले शमशान के माँ एक शनि वृक्ष है, माने जांच का वृक्ष, अपने देश में जांच कहते हैं उसको, शनि के वृक्ष के वहां बंधा हुआ है।